ओम शांति, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आपका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं मानसिक बीमारियों की। आज सोसाइटी में अगर हम देखें तो ये कोई स्टिग्मा नहीं रह गया, बल्कि एक्सेप्टेबल एस्पेक्ट हो चुका है, क्योंकि जैसे फिजिकल बीमारियां हैं वैसे ही मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और उनके इलाज भी संभव हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो क्या हैं, उनको समझा जाए और उसके बाद किस तरह के इलाज संभव हैं इसके बारे में बात की जाए। और हर बार की तरह बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सर शिवानी और हमारे साथ हैं वेल नोन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। ओम शांति।
ओम शांति।
डॉक्टर साहब, कई सारे एस्पेक्ट्स तो हमने लिए, खासकर अगर मेंटल हम इलनेसेस की बात करते हैं। कई बार देखा गया है कि हमारी वो कुछ हैबिट्स होती हैं जो लगातार चलती जाती हैं और फिर वो कभी कहा जाता है कि वो बीमारी बन गई। तो हाउ डज इट स्टार्ट, मेंटल इलनेस जो होती है बेसिकली?
कुछ मेंटल इलनेसेस हैं जो एक झटके से शुरू होते हैं। कल नहीं था आज है, बहुत कम ऐसी होती हैं। ज्यादातर होती हैं जो धीरे धीरे चलती हैं, डिपेंड करता है कि वो कितने समय से चल रही हैं। हम में से हर किसी व्यक्ति की कुछ शारीरिक बीमारियों के लिए, कुछ मानसिक बीमारियों के लिए या मानसिक समस्याओं के लिए एटलीस्ट वल्नरेबिलिटी होती है, यानी होने के चांसेस हैं। किसी को शुगर की बीमारी होगी, किसी को ब्लड प्रेशर की होगी, किसी को हार्ट डिजीज होगी, किसी को अल्सर की होगी, किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से मानसिक बीमारियों में भी किसी को हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर हो, किसी को हो सकता है स्किजोफ्रेनिया हो, डिप्रेशन हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, एंग्जाइटी हो। और ख़ास तौर पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही दिन में आमतौर पर नहीं आती, वो धीरे 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 बढ़ती हैं और एक स्टेज पर पहुंचती हैं जहां पे कि उस प्रॉब्लम की वजह से उस व्यक्ति का जीवन रुक सा जाता है, या सिम्टम्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, या सिम्टम्स की वजह से उस व्यक्ति का और परिवार का प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो फंक्शन ही नहीं कर पाते, या कुछ एबनॉर्मल तरह की चीजें हो जाती हैं जो पहले नहीं थी, तब उन्हें बीमारी माना जाता है। लेकिन अगर हम किसी प्रॉब्लम को अगर हैबिट के रूप में देखें, फॉर एग्जांपल कई लोगों को थोड़े से डाउट आते हैं। अब आप कहीं जल्दी में जा रहे हैं, आपको लगा कि मेरी चाबी पीछे तो नहीं छूट गई, या मैं जल्दी में निकला तो मैंने घर का ताला लॉक किया कि नहीं किया, या कहीं मुझसे कोई गीजर या ऐसी चीज तो नहीं खुली, छूट
गैस तो नहीं ऑन कर,
या गैस तो नहीं ऑन हो गई, या मैंने अपनी कोई कीमती चीज कहीं बाहर तो नहीं रखती, या लॉकर में गए तो कहीं मैंने लॉकर को बंद किया या नहीं किया। वो एक बार आई, आपने जाके चेक किया, सेटिस्फाइड हो गए, चल पड़े। लेकिन मान लीजिए ये रोज आ रही है या लगातार आ रही है, और एक बार नहीं कई बार आ रही है, तो भी लोग समझते हैं कि अरे मैं तनाव में हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसको तो मुझे चेक करना ही चाहिए ना, तो उस कारण से वो उसे नॉर्मल समझते हैं और चलते जाते हैं और वो बढ़ती जाती है। और फिर मान लीजिए एक जगह पे जाके इंसान अटक ही जाए, उसको सेटिस्फैक्शन हो ही ना, बार बार डाउट आए, उस डाउट की वजह से जो उसकी पहले की दिनचर्या थी वो सब बदल जाए, उसकी पढ़ाई या उसका काम उसमें बदलाव आ जाए, या दूसरे लोगों को उसको बार बार फोर्स करना पड़े कि अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, तो फिर वो वहां पे बीमारी का रूप धारण कर लेती है। मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि अगर वो बहुत समय से चल रही है और उसका कई तरह के जीवन के हिस्सों में असर आना शुरू हो गया, तो फिर ठीक करने का प्रोसेस भी लंबा और ज्यादा कष्टप्रद। तो इसीलिए ये समझ लेना कि अगर कोई चीज चल रही है, बढ़ रही है या ज्यादा चीजों में आ रही है, तो उसको उसी स्टेज पे अगर हम समझ के ठीक कर सके तो आसानी होगी।
सब ऐसा ही जो एस्पेक्ट्स सफाई से जुड़ा हुआ है, कई लोगों को ऑब्सेशन होता है कि सफाई करनी है। अब उसमें कभी वो सोचते हैं कि क्या ये बीमारी है, जैसे ये कहा आपने कि भूलने की, बार बार ये मन में बार बार खटकने की, या यही हैबिट क्लीनलीनेस, मतलब क्लीन चाहिए हर चीज, एक धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए, वो उनको तकलीफ दे रहा होता है, तो वो भी क्या एक ऐसा बीमारी का रूप बन सकती है?
एक होता है सोच में ये बातें आना और दूसरा होता है कर्म में वो बातें आना,
व्यवहार में है।
एक चीज होती है जिसको हम ऑब्सेसिव रिमिनेशन बोलते हैं, यानी आपको एक ही तरह का विचार बार बार आ रहा है कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वही विचार ऑलमोस्ट डिट्टो, जैसे कि आप एक स्क्रीन पे मूवी प्ले कर रहे हैं वही सीन बार बार चला रहे हैं।
अच्छा, कि मैंने यहाँ पे सफाई कर दी, हुई कि नहीं हुई?
नहीं, वो कर्म में आ गया। अच्छा। उससे पहले कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई।
ओके।
कुछ लोगों को सेक्स के बारे में आता है, कुछ लोगों को गॉड्स के बारे में आता है, कुछ लोगों को उन्होंने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया इसके बारे में आता है, कुछ लोगों को इस तरह से आता है कि कहीं मुझसे कोई जानवर तो टच करके नहीं चला गया, कुछ लोगों को यह आता है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ लोगों को वही विचार बार बार लगातार चलता रहता है,
मतलब हर रोज या दिन में ही?
दिन में ही कई बार। अच्छा। और एक बार में ही कई बार। मान लीजिए 10 मिनट तक एक ही विचार आपको आ रहा है और आप श्योर नहीं हो पा रहे हो कि वो सही है कि नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ। आपको विचार आया कि मैंने अभी चेक किया कि नहीं किया, आपने जाके फिर चेक कर ली भैया, और वो जो चेक करने का कंपोनेंट है उसको हम कंपल्शन बोलते हैं।
चेक किया पर मुझे रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि दोबारा
कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि वो एक्चुअली ठीक है कि नहीं है। तो कुछ लोग वेट करते हैं, ऑब्सेसिव थॉट चलता रहता है, फिर जाके चेक करना शुरू करते हैं। एक बार चेक किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, उसी से जुड़ा। और आमतौर पर चेकिंग जो है, चेकिंग में डोर्स को चेक करते हैं, स्विचेस को चेक करते हैं कि कोई चीज खुली तो नहीं रह गई, या तालों को चेक करते हैं। दूसरा है क्लीनलीनेस की ऑब्सेशन। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो गंदे हो गए, टॉयलेट में गए तो उनको लगता है कि टॉयलेट के बाद एक बार हाथ धोया तो वो काफी नहीं था, उसमें उनको लगता है कि इसको बार बार साफ करना चाहिए, खासतौर पर लेटरिन जाने के बाद। तो उसको वो 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार हाथ धोते रहते हैं। कुछ लोगों को नहाने का ऑब्सेशन हो जाता है कि अगर पूरे शरीर पर एक खास तरीके से उन्होंने साबुन नहीं लगाया और इतनी बार नहीं लगाया या आंकड़ों को गिन के नहीं लगाया तो इसका मतलब वो साफ नहीं हुए।
कैन इट बी कि दे हैव दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट, और ये ऑब्सेशन बनता है, या जनरली ही बन जाता है?
जो सफाई की ऑब्सेशन है उसमें कहां पे कल्चर खत्म होता है और कहाँ पे बीमारी शुरू होती है, कई बार ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि डिसाइड करने में मदद कर सकते हैं। कोई धर्म या कल्चर या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये नहीं कहती कि आप 10 बार इतने लोटों से नहाइए या आप हाथों को इतनी बार इस तरह से साफ कीजिए। सफाई की हर कल्चर के हिसाब से एक सीमा है। अगर वो सीमा पार हो जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में 100 बार हाथ धो रहा, हर बार 20 बार के लिए दिन में 5 बार गिन के हाथ धो रहा, या नहाना शुरू करता है तो इतनी बार नहाता है कि घर का पानी खत्म हो जाए, या दूसरे लोग बाहर खड़े उसे बुला रहे हैं और वो बाहर ही नहीं निकल रहा, या वो घर के हर कोने में घूम घूम के आता है ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई डस्ट तो नहीं है या सफाई का कुछ रह तो नहीं गया, या जब एक बार सफाई होगी उसके बाद फिर वो कपड़ा लेके उसको साफ करने के लिए आता है। तो जब ये चीजें हैं तो ये ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है। इसी के साथ एटलीस्ट ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस में एक और बात है कि कहीं ना कहीं उसे भी पता है राइट फ्रॉम डे वन कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उससे पहले वो ऐसा नहीं कर रहा था।
अच्छा, ये ऑब्सेशन सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज को लेके होती है, चाहे सफाई हो या भूलना, या वो पूरा व्यवहार में हर चीज को लेकर आने लगता है?
आमतौर पे एक व्यक्ति की एक खास तौर पे होती है।
okay.
और वहां पे जो उसकी बेसिक अपब्रिंगिंग है या जो परिवार का माहौल है या कल्चरली एक्सेप्टेबल चीज है, कई बार रिलीजन से भी थोड़ा सा कनेक्टेड चीज हो सकती है, तो उसकी वजह से होती है।
एंड इट कैन हैपन एनी टाइम।
इट कैन हैपन यूजली इन एडोलेसेंट, स्टार्ट्स एट दैट टाइम। और एक और चीज हम आजकल देख रहे हैं कि जो बच्चे अंदर से किसी और कारण से गिल्ट महसूस करते हैं, उस गिल्ट को कम करने के लिए आमतौर पे वो एक अल्टरनेट बिहेवियर को अपनाना शुरू करते हैं जो शुरू में उनको लगता है कि ठीक है। मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो सेक्स से रिलेटेड है और उनको लगा कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए था, वो शुरू में हाथ धोने लग जाते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं मैंने जो भी किया इतना गंदा था कि एक बार हाथ धोने से वो ठीक नहीं होगा, तो वो दो बार चार बार, अब उन्हें यहाँ पे पता लगना शुरू होता है कि ये नॉर्मल नहीं है। उसी के साथ उन्हें ये भी पता है कि यही चीज बार बार मन में रिपीट हो रही है। अगर हमारी किसी थॉट के बारे में प्रीऑक्यूपेशन होगी, चाहे सफाई के बारे में,
तो
एक जनरल प्रीऑक्यूपेशन होगी कि चीजें साफ रहनी चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि नहीं यहाँ पर इतनी सी भी मिट्टी जो है मैं देख पा रहा हूँ, और साथ ही साथ ये फीलिंग आने कि इसकी वजह से मैं गंदा हो गया हूँ या इसकी वजह से कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। कभी कभी उनके मन में एक और चीज आती है कि मेरे कुछ गलत एक्शन करने से दूसरे को हार्म हो जाएगा।
अगर ये नहीं किया साफ,
अगर मैंने ऐसे साफ नहीं किया तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, या अगर मैंने कुछ गलत भगवान के बारे में सोचा, कुछ लोगों को बहुत कष्टप्रद विचार आते हैं कि सेक्स और गॉड वापस में इमेजेस कई बार उनके दिमाग में मिक्स हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि मैंने ऐसी बात किसी देवी देवता या किसी और अवतार के बारे में सोची तो उसकी वजह से या मुझे या मेरे परिवार को पनिशमेंट होगी, तो उस चीज को कम करने के फिर वो दूसरा एक्ट करते हैं और वो रिपीटेडली एक्ट करते हैं। उन्हें मालूम है कि एक्ट का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो रिपीट करने से रुक नहीं पाते, इसकी वजह से उन्हें बहुत कष्ट होता, जिंदगी रुक सी जाती है, और ये फिर धीरे 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 जनरलाइज होता जाता, बढ़ता जाता है। ये भी देखा गया है कि कई बार वो व्यक्ति उस जगह पे जहाँ पे की लिबर्टी है उसको, चाहे हाथ धोने में या चेक करने में, वहां पे वो करता है, लेकिन बाहर कुछ देर के लिए अपने मन को रोक पाता है क्योंकि उस सिचुएशन में वो नहीं करता, तो घर वाले कहते हैं कि देखो ये तो ड्रामा कर रहा है,
बाहर तो ठीक था,
बाहर तो नहीं किया, घर में इतनी बार क्यों कर रहा है। कुछ परिवार जो है वो उसको इस कारण से दूर करने की कोशिश करते हैं या प्रेशर डालते हैं, जैसे ही तनाव बढ़ता है तो उसके ये थॉट्स और डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब वो थॉट डिस्टर्ब होते हैं तो उसे लगता है कि उसका जो सीक्वेंस है वो बिगड़ गया, उस वजह से वो और करने लगता है। कुछ परिवार होते हैं जो उसका हिस्सा बन जाते हैं कि अच्छा मैं तेरे सामने चेक करके 5 बार गिनूंगा और 5 बार अगर तुमने कर लिया तो इसका मतलब इट्स ऑल राइट। अब वो परिवार जो है उसी में फंस जाता है, उसके साथ ऑब्सेशन को देखने में उसने सही किया है या नहीं ये उसको बताने में फंस जाता है, तो सिर्फ अब एक परिवार नहीं परिवार के पूरे सदस्य इसी प्रोसेस में फंस जाते हैं, एंड समटाइम्स इट गोज ऑन फॉर इयर्स।
तो ये मुझे बात बताएं कि जब वो एक्ट में है, चाहे वो सफाई या देखने के, उस टाइम पे बार बार जो हो रहा है तो थॉट ये आता है कि मैं गंदा हूं या मैंने वो चीजें की थी, या थॉट सिर्फ ये आता है कि मुझे धोना है,
कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाता है,
एक्ट रह जाता है।
शुरू में ये दिमाग में बात आती है कि अगर मैंने ये नहीं किया
तो
कुछ गलत हो जाएगा, या मैं गंदा रहूंगा, या उसकी वजह से घर के सदस्य को कोई चीज हो जाएगी, या उसे हर जगह पे वही चीज दिखती है, या बाहर वो चला गया और चेकिंग उसने आज नहीं की तो ध्यान वहीं पे लगा रहता है, वो वापस घूम फिर के वहीं पे आएगा ये देखने के लिए, लेकिन एक बार जागने के बाद फिर दूसरी बार आएगा कि शायद मैंने पूरी तरह से ताला नहीं चेक किया या उसको ठोक के नहीं देखा। कुछ देर के बाद वो सिर्फ आंकड़े रह जाते हैं, वो सिर्फ नंबर्स रह जाते हैं, वो सिर्फ रेपिटेटिव बिहेवियर रह जाता है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक तरह से बैकग्राउंड में जाने शुरू हो जाती है, देन इट जस्ट बिकम्स अ कंपल्सिव एक्ट। लेकिन अगर वो उसको नहीं करता, या उतनी बार कई बार हम ये देखते हैं कि लोगों के हाथ गलने शुरू हो जाते हैं, या पूरा जो उनका डे टू डे फंक्शनिंग है वो पूरी खत्म हो जाती है, या कई बार रात को वो ये चीजें करनी शुरू कर देते हैं तो पूरी रात वो उनका प्रोसेस चल रहा है। खास तौर पे अगर कोई व्यक्ति बाहर जाके कुछ ऑब्सेशंस करता है तो आप कई बार कुछ लोगों को देखते होंगे कि वो चलते हुए अपने स्टेप्स को ऐसे करते हैं कि वो नॉर्मल नहीं चल रहे, क्योंकि वो किसी लाइन के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते, या लाइन के ऊपर उनको 3 बार पैर रखने की जरूरत होती है। तो ये कुछ ऐसे ऑब्सेशंस हैं जो आमतौर पे एडोलेसेंस में शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही ये कंपल्शंस का रूप धारण कर लेते हैं तो उसके बाद ये प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है।
ओके, सो इम्पोर्टेंट इज टू कैच इट यू नो
अर्ली।
हाँ, अर्ली, और जब ये अभी हमारे थॉट्स में ही है, व्हाट आर द इंटरवेंशंस? मतलब एक तो ये कि अगर थॉट के लेवल पे ही हम पकड़ पाएं, पेरेंट्स के साथ शेयरिंग हो जाए, साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाएं, या फिर अगर ये कंपल्शन में बदल गया है, तब दोनों में ही क्या इंटरवेंशंस हैं, मेडिकल इंटरवेंशंस?
दोनों में मेडिकल इंटरवेंशंस पॉसिबल हैं, और मेडिकल इंटरवेंशन यहाँ पे सिर्फ मेडिसिंस नहीं है, मेडिसिंस के साथ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, उस व्यक्ति को इस बारे में नॉलेज देना पहले कि ये एक रेपिटेटिव एक्ट है जिसके बारे में वो भी कुछ हद तक समझता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो खराब नहीं है लेकिन वो उसमें फंसा हुआ है। अगर शुरू में ही इस चीज को बेटर किया जा सकता है और वो व्यक्ति मदद के लिए आता है तो वहां पे जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, यानी उसकी सोच में बदलाव लाके उसके एक्शंस में बदलाव लाना। सिंपलेस्ट नॉलेज जो कि सही भी है कि ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, इससे आप खुद भी परेशान हो, इसकी वजह से आपको कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आपने जिंदगी में जो भी किया है उसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच सकता। कई बार लोग इसमें कर्मिक फिलॉसफी भी लेके आते हैं कि मैंने ये सोचा तो उसका इतने गुना असर दूसरे पे होगा। तो कई बार उन्हें ये भी समझाना कि आपने जो जानबूझ के नहीं किया, हमें से कई एक्ट हैं जो कि इनएडवर्टेंटली हो जाते हैं, हम सोचते भी नहीं है बल्कि हम तो उसके बारे में परेशान हैं, तो उससे आप पे कोई नेगेटिव कार्मिक या दूसरे के ऊपर परिवार वाले पे तो डेफिनेटली नहीं आने वाला। और फिर ये समझ कर कि अगर मैं कुछ देर के लिए नहीं करता हूं तो देखते हैं क्या होता है।
हाँ, ओके, रिपरकशन क्या है।
और वो उन्होंने कभी ट्राई नहीं की क्योंकि जिस स्टेज पे वो आमतौर पे आते हैं वो उस ऑटोमेटिक बिहेवियर में इतने फंसे हुए हैं कि वो उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। बट जस्ट उनको कहना कि अच्छा एक दिन के लिए ट्राई करते हैं कि अगर आपने इतनी बार नहीं किया, या कई बार उनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना जो कि सच्चाई ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार मान लीजिए हाथों को प्रॉपर तरीके से धो लेता है तो जितने भी जर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे निकल जाते हैं। 5 बार या 10 बार धोने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, लेकिन नुकसान है क्योंकि आपका हाथ जो है उसकी स्किन खराब हो सकती है। तो उनको ये कहना कि अच्छा आप एक बार धोएं, चाहे अंडर सुपरविजन धोएं, अब आप 50 बार धो रहे हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ 5 बार धोएं और उसके बाद वहां से हट जाएं, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें अपने आप को। तो शुरुआत यहीं से हो सकती है और उसके बाद हर व्यक्ति की ऑब्सेशन के हिसाब से अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं, बिहेवियर थेरेपी है जो कि ये प्लान करके कि वो क्या कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, मन में उसके क्या उसके बारे में नेगेटिव विचार आ रहा है, और उस बिहेवियर को जो लोएस्ट है उससे कम करके और फिर जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार करता है उसको धीरे धीरे कम करना। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इस प्रोसेस में व्यक्ति परिवार जो कई बार बहुत ज्यादा इसमें फंसा हुआ है या दुखी
होगा ना, खुद भी तो हैरेस्ट हो चुकी होती है फैमिली,
क्योंकि एक परिवार के लिए जो अभी बच्चा पढ़ रहा है या कॉलेज में गया है या जॉब करने लगा है, वो अचानक इस चीज में फंस गया है तो उसके लिए तो पूरे की पूरी जिंदगी जो है वो रुक सी जाती है, तो परिवार के लिए भी बड़ा मुश्किल है।
इसमें स्पिरिचुअल इंटरवेंशन कितनी हेल्प कर सकता है? इफ यू नो स्पिरिचुअल इंटरवेंशन हैपेंस एंड इट इज नोन टू हिम कि गॉड एक्सेप्ट्स यू द वे यू आर,
आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में जैसे सेंटर्स पर भी लोग आते हैं ऐसे, गॉड एक्सेप्ट्स यू वो तो उनको मिलती है या नॉलेज एंड वो एक्सपीरियंस भी मिलता है धीरे धीरे, लेकिन जो उनकी वो वाली स्पेसिफिक वाली बात होती है उसके लिए भी उनको थॉट्स दी जाती हैं, यू नो, बिकॉज इट्स लाइक इफ आई एम वॉशिंग माई हैंड्स अगेन एंड अगेन एंड मुझे कोई कहे गॉड एक्सेप्ट्स यू, बट समटाइम्स नॉट एबल टू कनेक्ट द टू थिंग्स, तो मैं ये बिलीव करूँगी गॉड एक्सेप्ट्स मी बट मेरी ये वाली चीज़ नहीं जाती है, उसके लिए भी कॉन्स्टेंट जो उनको यू नो मतलब आप जो सोच रहे हो मुझे हर बार आपको उसके लिए काउंटर थॉट देना है, यू नो, सो इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी कि आपको वो देते जाना है उसको कि इट्स लाइक उनका मन एक थॉट क्रिएट करेगा एंड आपको उसका एक काउंटर उनको देना ही पड़ेगा, विच कुड बी मैनी मैनी टाइम्स, तो कई बार जब फैमिलीज के साथ वो लोग आते हैं तो फैमिलीज भी सीखती हैं कि क्या थॉट्स उनको देनी है. सी बेसिकली माइंड की मैकेनिज्म को जब समझ लिया और आप अवेयर हो कि माइंड कैसे सोचता है, और फैमिलीज को ये भी समझ में आता है कि एक ये ठीक हो जाएगा एंड दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें इसकी कोई
गलती
नहीं है एंड दिस इज जस्ट एन इलनेस एंड इसमें हम उसको हेल्प कर सकते हैं कि थॉट को एक थॉट देते जाओ. अगर हम सिर्फ उस बच्चे को या उस व्यक्ति को कह दें तो समटाइम्स वो नहीं कर पाएगा. यू नो, जैसे हमारे पास एक लड़का आया, ही वाज इन द 12th स्टैंडर्ड, उसका एक रिलेशनशिप था, तो उसका जो ऑब्सेशन हो गया था वो था डाउटिंग द गर्ल. यू नो, कॉन्स्टेंटली डाउटिंग द गर्ल, कॉन्स्टेंटली बालकनी में जाना, देखना, चेक कर, और सोचते जाना उस बारे में, सोचते जाना. एंड ही वाज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो वो पढ़ाई में मन न लगना और सिर्फ कॉन्स्टेंटली डाउट करना, फिर डाउट करते फिर एकदम से उसको फ़ोन करके कुछ कह देना बिकॉज ऑफ दैट, फिर ऑब्वियसली वो लड़की वहाँ से रिएक्ट करेगी, फिर वो स्ट्रेस और बढ़ जाना, तो और डाउट करना. तो फॉर अबाउट आई थिंक मोर देन अ मंथ वो बार बार फ़ोन करते थे एंड बार बार वो कहते थे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है. एंड उनके हर स्टेटमेंट के लिए हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उनको देना होता था,
एक या पांच देनी पड़ेगी.
हाँ, मतलब देते ही जाना.
हाँ.
अब वो भी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बिकॉज वो तो हर थोड़ी देर बाद फिर फोन करते थे, बट फैमिली कर सकती है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली घर पे हो. सो इफ ही सेज बट शी डिड दिस, तो वी हैव टू से बट व्हाट अबाउट दिस, यू नो लुक एट हर, शी डिड दिस एंड यू नो, तो धीरे धीरे उसकी थॉट को एक दूसरी थॉट के साथ रिप्लेस करने में सामने वाले को मदद करना, ताकि इवन अगर हमारी थॉट देने के बाद वो पांच मिनट के लिए भी वैसा सोच पाए, पर उसकी वो वाली थिंकिंग डाउट की वापस आएगी, फिर उसको वो थॉट देना, धीरे धीरे उसकी मदर ने भी करना शुरू कर दिया उसके साथ, यू नो. एंड ग्रेजुअली अ चाइल्ड हु इवन द डॉक्टर सेड कि ये इस बार 12th के एग्जाम नहीं दे पाएगा, ही गॉट 80%. साइकाट्रिक वो ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ थॉट्स को चेंज, यू नो, सिर्फ मेडिसिन वो तो बहुत वर्क करती है, लेकिन वॉट अबाउट कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद द पर्सन. एंड ही गॉट 80%, बट लॉट ऑफ एफर्ट जो उस बच्चे का अपना एंड फैमिली का भी साथ में, हर बार छोड़ नहीं देना उसको उसकी सोच के साथ, या ठीक उसकी सोच के साथ कॉन्स्टेंटली उसको नई थॉट देते गए, धीरे धीरे वो दूसरी थॉट उसकी अपनी थॉट के ऊपर ओवरपावर किया, इट रियली वर्कड. सो आई थिंक दैट वे इफ यू कम एंड इनिशियल स्टेज में ऑब्वियसली तो थॉट्स के साथ वर्क करना फैमिली को आ जाता है, पहले अपनी थॉट्स के साथ और फिर उस बच्चे को उसकी थॉट्स के साथ चेंज करना हेल्प कर सकते.
यूजुअली हम बहुत लेट पहुंचते हैं.
हाँ, और ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे कि बहुत अच्छा समागम हो सकता है मेडिसिन्स का अप्रोप्रिएटली, क्योंकि मेडिसिन्स क्या करती हैं, ये जो आमतौर पे एंटी ऑब्सेसिव या एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद उस व्यक्ति में डिप्रेशन अपने ऑब्सेशंस की वजह से या कंपल्शंस की वजह से वो हो जाता है. एंड इवन अदरवाइज जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं प्रॉपरली अंडर सुपरविजन वो उस चीज़ की इंटेंसिटी को कम करती हैं. उस समय पर साइकोलॉजिकल इनपुट्स प्रिंसिपल्स और स्पिरिचुअल इनपुट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीच गिल्ट का, कहीं ना कहीं एक बीच की मैंने कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल इनपुट्स जो हैं वो बहुत मदद करती हैं. और सिर्फ व्यक्ति को नहीं, उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली भी आमतौर पे इस प्रॉब्लम में इतनी देर तक जूझने के बाद खो जाती है कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी कई बार रुक जाती है. तो उन्हें ये मदद करना कि आप इसकी मदद करें लेकिन उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बंद ना कर दें. दूसरा, कई बार फैमिलीज़ को खुद भी ये लगता है कि हाँ इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं. और वहाँ पे मैं एक तरह से अपील ही करना चाहूँगा कि गिल्ट प्रोड्यूसिंग थॉट्स कई बार इनएडवर्टेंटली ही शायद लोगों को दे दिए जाते हैं, हर व्यक्ति के द्वारा, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी, और वो आगे जाके किस रूप में इस तरह की प्रॉब्लम का बीज बन जाए कह नहीं सकते. तो जो हो गया है उसके बारे में उस व्यक्ति की मदद करना कि वो पीछे छोड़ दे, और उसको ये सपोर्ट देना कि जो भी हुआ है यू आर स्टिल गुड इनफ द वे यू आर. हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हर चीज में हो सकती है. एंड लास्टली बट वेरी वेरी इम्पोर्टेंटली कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है. आपकी जिंदगी नहीं है. तो और जो चीजें आप कर सकते हैं अपनी लेवल पे दूसरे लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी एक चीज जो होती है कि इन ऑब्सेशंस या कंपल्शंस की वजह से लोग बाकियों से कट जाते हैं. वो अकेले होने लग जाते हैं. फैमिलीज बिल्कुल कट जाती हैं. वो आना जाना बंद कर देती हैं, दूसरों से मिलना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये दूसरों के सामने करेगा तो क्या हो जाएगा. मैरिजेज नहीं होती हैं, या अगर मान लीजिए माँ को ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चों को कितनी दिक्कत हो सकती है. तो दूसरे सपोर्ट सिस्टम्स इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन डू वंडर्स कि इस चीज को कम करने में व्यक्ति की मदद करें.
कंप्लीटली क्यूरेबल है,
कंप्लीटली ट्रीटेबल है, और उसमें आप कितनी इनपुट्स देते हैं उस पे एक बहुत बड़ा मदार है. अगर हम ये सोचें कि आपने किसी डॉक्टर को विजिट किया और दवाइयां ले ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं. वो एक पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ आप और आपके आसपास वाले इन पे कितना काम करते हैं कंसिस्टेंटली. और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टोटली नेगेटिव है. अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा साफ सफाई वाले हैं, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से रखते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में मदद भी कर सकता है. सो ऑब्सेसिव ट्रेट्स जिनको हम बोलते हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी का थोड़ा सा हिस्सा, वहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से कर भी सकते हैं. लेकिन जब वो आपकी जिंदगी पे हावी हो जाती है तो उसकी मदद लेने की जरूरत है. और मदद के साथ, यस, इट कैन बी हेल्प.
Very true, and in fact, it's a big help. You know, this kind of affirmation ki possibilities hain, aur har tarah ki madad jo hai, wo aaj available hai. Dr. Avadhesh Sharma, Sister Shivani, thank you so much.
Om Shanti.
Most of us are vulnerable to some physical or mental illness, which means a chance of having them. Mental illness can be bipolar, depression, anxiety, OCD. Most mental illnesses begin as a behavioral pattern, but when they reach a stage where they affect our day-to-day functioning, then it is called a disease. Repeated patterns of a particular thought, like whether a task has been done properly, have I made a mistake? Have I hurt someone? Will I fall ill? If any of these thoughts continue repeatedly many times a day, then it is called obsession. When an obsessive thought comes into action, like washing hands, having a bath, checking the door, checking the gas or switches, if these actions are performed repeatedly, then it is called a compulsion. This is OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Spiritual counseling and psychiatric treatment can treat OCD. Spiritual insights and family can help the person to create a thought which counters their obsessive thought and gradually change the obsessive thought pattern.